वैल्यू रेडियो के प्रोग्राम फिक्रंगेज में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान शारिक अली। अगर आप पाकिस्तान में बसने वाले आम लोगों की ज़िंदगी से कोई दिलचस्पी रखते हैं और गलियों, बाजारों, दुकानों और दफ्तरों की कैफियत शाम सहर से वाकिफ होना चाहते हैं, तो इस सूरत हाल को सही तौर पर जानने के लिए पाकिस्तान टेलीविजन की मशहूर ज़माना सीरियल अलिफ नून से बढ़कर भरपूर और खुशगवार कोई रास्ता नहीं। हम अगले चंद मिनटों में इसी प्रोग्राम के हवाले से कमाल अहमद रिजवी और रफी खावर के फन को खिराज तहसीन पेश करेंगे।
खवातीन और हजरात, मुल्क के मुमताज फनकार अलन नन्ना।
1960 की दिहाई में पहले पहल पाकिस्तान टेलीविजन से नशर होने वाला अलिफ नून एक लाइव टेलीकास्ट थी। उसके बाद के आने वाले सालों में ये प्रोग्राम पाकिस्तान टेलीविजन से 3 मरतबा मुख्तलिफ औकात में नशर हुआ और हर बार मकबूलियत के बुलंदतरीन मकाम तक पहुंचा। अलिफ नून की हर दिल अजीजी और बेपनाह कामयाबी में रफी खावर की बेमिसाल और मासूमाना अदाकारी का अहम हिस्सा है। 1942 में साहिवाल में पैदा होने वाला ये बासलाहियत अदाकार नन्ने के किरदार में कुछ इस तरह रच बस गया है कि उसमें से रफी खावर की शख्सियत को अलग थलग करना तकरीबन नामुमकिन सा लगता है।
यहाँ क्या हो रहा है? कारें तकसीम हो रही है।
कारें तकसीम होंगी क्यों? कारें फालतू हैं?
नहीं नहीं, वो जो कारें तकसीम करता है, वो जो कहता है
क्या? कौन?
दुखती आंखों बहते कानों को सलाम पहुंचे।
और उसके बाद वो एक शेर भी पढ़ता है।
जुस दी के ममंदी के ममन्ना उस निगाहें हस्ती रिकता दी रिकभागा जी कपाहें।
ये किस जुबान का शेर था भला?
ये तो उसको भी पता नहीं होता।
यूं तो उसने अपनी फिल्मी जिंदगी में 390 फिल्मों में काम किया, मगर उसकी अजीम शोहरत उसके पहली दफा किए हुए ड्रामे अलिफ नून से शुरू होती है और उस पर खत्म।
यार असल में बात यह है नन्ने, कि हम ज्यादा अरसे तक खुली फिजा में सांस नहीं ले सकते।
हाँ, नहीं, खुली फिजा में वो ऑक्सीजन बड़ी कम होती है।
अबे ऑक्सीजन नहीं दे। अब देखना यार, हम वहां पार्क में सोते थे, पुलिस गश्त करती थी।
हाँ, बिल्कुल करती।
वहां पर फुटपाथ पर सोते थे तो चौकीदार तंग करता था।
तंग करता था वो तो यहाँ पे डंडे मारता था। उठो।
हाँ, तो अब देखना, वहां पर सोते हुए फुटपाथ पर याद नहीं तुझे, तेरी घड़ी चोरी चली।
हाँ लन, वो तो यार मुझे ईमान से घड़ी का बड़ा अफसोस हुआ।
मुझे खुद बड़ा दुख है यार,
लेकिन मुझे एक आदमी पे शक है।
अच्छा, किस पे? किस पे?
किसने? मैं नहीं बताऊंगा, तू मुझे मारेगा।
ना मारूंगा क्यों, जिस पर शक है तुझे बता दे। अच्छा, चौकीदार पे?
नहीं नहीं, चौकीदार पे तो नहीं, चौकीदार तो बड़ा शरीफ आदमी है।
तो फिर किस पर?
अलन मुझे तुम पे शक है।
जब
ईमान से, तू बड़ा भारी चोर है
यार। मुझे तेरी घड़ी उतारने की क्या जरूरत है, मेरे पास अपनी घड़ी नहीं है।
हाँ तो फिर तेरी घड़ी किसी ने क्यों नहीं उतारी?
हाँ, उसकी वजह यह है कि मैं हाथ को हमेशा जेब में रख के सोता हूँ।
अब जरा अपनी चश्मे तसव्वुर में एक मंजर देखने की कोशिश कीजिए। ये अब से कोई 55 बरस पहले की बात है। पाकिस्तान बने तकरीबन 10 बरस होने को हैं और आप एक बच्चे की तरह लीमू के महकते हुए पौधों के पीछे घने पत्तों से नजर आने वाले मंजर को देख रहे हैं। आपकी नजरों के सामने एक पुरानी तर्ज का मगर कुशादा सा घर है। उस घर के सामने सरसब्ज और कुशादा लॉन है और उसके इर्द गिर्द कदीम और तवाना मगर घने दरख्त और उसके सामने बिछी हुई लकड़ी की बेंचों पर बहुत से लोग आकर बैठते हैं। वो आपस में गुफ्तगू करते हैं। इस घर का नाम है अलहमरा और ये शहर लाहौर में वाके है। कुछ फासले पर घने दरख्तों के नीचे उस वक्त के अजीम मुसव्विर तालिबे इल्मों को पेंटिंग सिखाते हैं। आप पत्तों की ओट से इन सब लोगों को अकीदतमंदी से देख रहे हैं। इनमें फैज अहमद फैज भी हैं जो बहुत धीमे लहजे में गुफ्तगू करते हैं, सिगरेट पर सिगरेट पीते हैं और कभी कभार एलिस फैज अपनी साइकिल पर इस इमारत में फैज से मिलने आती हैं। दीगर आने वालों में बहुत से मशहूर लोग हैं, नासिर काजमी, हबीब जालिब, ये सब लोग लिखने वाले हैं, शायर हैं, अदीब हैं, मुसव्विर हैं और बहुत से तालिबे इल्म जो इनके नक्श कदम पर चलना चाहते हैं। इनमें से बहुत से लोग माशी तौर पर बदहाल हैं, इनकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं, مگر ان کے دل و ذہن خوابوں کی دولت سے مالا مال ہیں۔ ایک ایسے ملک اور ایک ایسے معاشرے کا خواب کہ جس میں انسان دوستی پھل پھول سکے، جس میں انصاف میسر ہو سکے، خوشحالی ممکن ہو، فکر و خیال کی آزادی ہو، تخلیقی صلاحیتوں کے پروان چڑھنے کے مواقع ہوں۔ یہ خواب ان سب دانشوروں، لکھنے والوں، شاعروں، مصوروں میں ایک قدر مشترک ہے۔ یہ خواب ان سب لوگوں کو یکجا رکھتے ہیں۔ انہی لوگوں میں ایک دبلا پتلا سا نوجوان ہے جو اپنے خاندان سے اختلاف رائے رکھتے ہوئے تقسیم ہند کے بعد پاکستان ہجرت کر چکا ہے۔ وہ بے روزگار ہے لیکن اسے لکھنے لکھانے کا جنون کی حد تک شوق ہے۔ اس کی زندگی کا پیشن ہے تھیٹر۔ اس نوجوان کا نام ہے کمال احمد رضوی۔ وہ اپنے پیشن کی تسکین کے لیے اور اپنی مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے عظیم روسی ادیبوں کے ترجمے شائع کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے لکھے ہوئے ڈراموں کو سٹیج کرتا ہے اور پھر خود اپنے ہی لکھے ہوئے ڈراموں میں اداکاری کے جوہر دکھاتا ہے۔ نکولائی گوگول، چیخوف، بریخت، وہ ان سب سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، مگر وہ اپنی انفرادی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے سماجی المیے کے بیان کو مزاح اور طنز کی مدد سے دنیا کو ہنسانے اور پھر سوچنے پر مجبور کرنے کا فن اختیار کرتا ہے۔
یا تو تیرا کیا خیال ہے، یہ جتنی تصویریں ہیں یہ سب منحوس تصویریں دکھ جائیں گی؟ دکھ جائیں گے رہی ہے تو اتنے مہنگے داموں بھی جائیں گے جتنے کا تو خود نہیں دکھ سکتا ہے۔ نہیں بکیں گے یہ، اس کو تو کوئی پاگل ہی خریدے گا میرے خیال میں۔ ارے ان کو وہ لوگ خریدیں گے جو بازوق کہلوانے کے شوقین ہوتے ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ جن کا کوئی ذوق ہوتا ہی نہیں۔ ان کے پاس ہر قسم کا پیسہ ہوتا ہے اور کوٹھیاں ہوتی ہیں۔ تو تیرا کیا حال ہے کہ یہ تصویریں سب کوٹھیوں میں سجیں گی؟ اور نہیں تو سجے گا کوٹھیوں میں۔ ارے یہ فراڈ ہے، میں تجھے کہہ رہا ہوں یہ گرفتار ہو جائے گا تو میں اور کو فراڈ کر رہا۔ ہاں تو اور کیا ہوگا، یہ فراڈ نہیں ہے تو اور کیا؟ میں نے تو سنا ہے کہ انسان پوری زندگی تباہ کرنے کے بعد پھر جا کے مسور بنتا ہے۔
دیکھو ان کو ملا کیا بےچارا، وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئے۔ آج کل کا آرٹسٹ ایک تصویر بناتا ہے اور 10 سال کھاتا ہے،
نہ تو وہ دنیا میں کام تو چھوڑ جاتا ہے نا اپنا۔